ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 119। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो ब्रह्म सत्ता ही है तो आकाश क्या है, पृथ्वी क्या है, मैं क्या हूँ, यह जगत क्या है, ये प्रश्न उठते नहीं। एक मन को स्थिर करके देखो कि ब्रह्मा से चींटी तक जो कुछ भी पदार्थ है वे सब सद्भासित हो तो प्रश्न कीजिए। इसलिए जैसे ब्रह्म से दूसरा चंद्रमा दिखता है, वैसे ही जगत भी ब्रह्म से भासित होता है। रूप अर्थात दृश्य, अवलोक अर्थात इंद्रिया, मनस्कार अर्थात मन की स्फूर्ति, ये शब्द कलना में फुरे हैं, ये सब मिथ्या है। आत्मा में इनका अस्तित्व नहीं है। हे रामचंद्र जी, आकाश आदिक पदार्थ भावना में स्थित है। जीव जैसे भावना करता है वैसे पदार्थ सिद्ध और भासित होते हैं। जब संसार की भावना उठ जाए तब कोई पदार्थ न भासित हो। हे रामचंद्र जी, सुषुप्ति में ही जब इसका अभाव हो जाता है तो तुरियावस्था में कैसे भान हो। जब जीव अपने स्वरूप से गिरता है तब उसको संसार भासित होता है, और वह संसार में वासना और प्रमाद से घटी यंत्र की नाई घूमता फिरता है। स्वरूप से उतरकर अनात्म में अभिमान करने को मैं हूं, मैं ही करता हूं, इस भावना को प्रमाद कहते हैं। यही अज्ञान है जिससे दुख मिलता है। जब अज्ञान नष्ट होगा तब संसार के शब्द अर्थ का अभाव हो जाएगा। अहंकार से संसार होता है। संसार का बीज अहंकार ही है। अहंकार अनात्म देह में आत्म अभिमान करने को कहते हैं। हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्मा अहंकार के उत्थान से रहित केवल शांत रूप है। विश्व का भी वही रूप है। इस भावना में दुख है। यह सम्मित शक्ति आत्मा के आश्रय से फुरती है। जैसे तेल की बूंद जल में डालिए तो चक्र की नहीं फिरती है, वैसे ही संवेदन शक्ति आत्मा के आश्रित फुरती है। ब्रह्म एक स्वरूप है। उसका स्वभाव ऐसा है जैसे मोर का अंडा और उसका वीर्य एक रूप है। अपने स्वभाव से वीर्य ही नाना प्रकार के रंग रखता है तो भी मोर से कुछ भिन्न नहीं। वैसे ही आत्मा के संवेदन स्वभाव से नाना प्रकार का विश्व भासित होता है, परंतु आत्मा से कुछ भिन्न नहीं, सब आत्मरूप ही है। सम्यक दर्शी को नाना प्रकार में एक आत्मा ही दिखता है, और अज्ञानी को नाना प्रकार का जगत दिखता है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्म रूपी एक शिला है, उसमें त्रिलोकी रूपी अनेक पुतलियां कल्पित है। जैसे एक शिला में शिल्पी जब पुतलियों की कल्पना करता है कि इसमें इतनी पुतलियां होंगी, तब वे पुतलियां उसके चित्त में है और शिला में कुछ नहीं हुआ, वैसे ही आत्मरूपी शिला में चित्त रूपी शिल्पी जो नाना प्रकार के पदार्थ रूपी पुतलियों की कल्पना करता है, सो सब आत्मरूप है। इसे पदार्थों की भावना त्याग कर आत्मा में स्थित हो। यह संसार भी निर्वाच्य है, क्योंकि यह ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं। न कोई उपजता है, न कोई नष्ट होता है, ज्यों का त्यों आत्मा ही स्थित है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, तो इस संसार का बीज अहंकार हुआ, इसका पिता अहंकार है, तो मिथ्या संसार जो अविद्यमान ही विद्यमान लगता है सो भी भ्रम रूप हुआ, और जो संसार भ्रम रूप है तो लोग और शास्त्र, श्रुतियां और स्मृतियां क्यों कहते हैं कि इसका शरीर पिंड से होता है, और जो पिंड से होता है तो आप कैसे उसे भ्रम कहते हो? जो भ्रम है तो लोल, शास्त्र, श्रुतियां और स्मृतियां क्यों उसे पिंड से कहती हैं? इस मेरे संशय को आप निवृत्त कीजिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मेरा कहना सत्य है, ब्रह्म में ब्रह्मत्व स्वभाव है और जगत का स्वरूप भी वही है। हे रामचंद्र जी, आदि जो किंचन हुआ और चित्त शक्ति फूरी, वही ब्रह्मारूप हुआ और उसको पदार्थों का मनोराज्य हुआ। यह आकाश है, यह पवन है, यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है, यह सत्य है, यह झूठ है, इत्यादि मनोराज्य जब तक है तब तक सब मर्यादा ऐसी ही है। फिर ब्रह्मा ने यह सोचा कि जगत की मर्यादा के निमित्त वेद में कहूं कि यह पदार्थ शुभ है और यह अशुभ है। हे रामचंद्र जी, आत्मा में कुछ द्वैत नहीं, माया रूप जगत में मर्यादा है, तो अध ऊर्ध्व नीच ऊंच कौन कहे? यह मर्यादा भी वेद में नीति निश्चय हुई है कि ये शुभ कर्म है, इनके करने से स्वर्ग सुख ही भोगते हैं, और ये अशुभ कर्म है, इनके करने से नरक दुख भोगते हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे वेद में निश्चय किया है वैसे ही जीव अपनी वासना के अनुसार भोगता है। हे रामचंद्र जी, यह रचित शक्ति नीति होकर ब्रह्मादिक में फुरी है, परंतु उन देवों को सदा स्वरूप में निश्चय है, इसे वे संसार में नहीं बंधते। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ने यह वेद रचा है कि जैसा कोई कर्म करे वैसा ही फल वे देते हैं, यह वेद सबकी नीति है। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों को संसार की सत्यता दृढ़ हुई है वे शुभ अथवा अशुभ जैसे कर्म करते हैं वैसे ही शरीर को धारण करते हैं। इसमें संशय नहीं है कि जो शास्त्र मर्यादा का अपनी इच्छा से उल्लंघन करते हैं वे शरीर त्याग कर कुछ काल तक मूर्छित हो जाते हैं और आत्मज्ञान बिना एक मुहूर्त में जाकर बड़े नरकों को चले जाते हैं। जिनको शून्य भावना हुई है कि आगे नरक स्वर्ग कोई नहीं, और जो लोक परलोक के भय को त्याग कर शास्त्र बाह्य आचरण करते हैं वे मरकर पत्थर, वृक्ष आदि की जड़ योनि पाते हैं। चिरकाल से वासना बलवती होने के कारण वे फिर दुख के भागी होते हैं, और जिनको आत्म भावना हुई है और संसार की भावना निवृत्त हुई है वे शास्त्र विहित करे अथवा शास्त्र विरुद्ध करे उनको कोई बंधन नहीं होता। हे रामचंद्र जी, मनुष्य चित्तरूपी भूमि में निश्चय रूपी जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काल पाकर उगता है, यह निसंशय है। इससे तुम आत्मभावना रूप बीज को बो, समझो कि सब आत्मा ही है। ऐसी भावना करो तब शुद्ध आत्मा ही भासित होगा। और जिनको संसार का निश्चय हुआ है उनको संसार है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष धर्मात्मा है उनको उसी वासना के अनुसार भासित होता है। धर्मात्मा भी दो प्रकार के हैं, एक सकाम और दूसरे निष्काम। जो धर्म करते हैं और पाप रूपी कामना सहित है वे स्वर्ग भोग भोग कर फिर गिरते हैं, और जो निष्काम ईश्वरार्पण कर्म करते हैं उनका अंतःकरण शुद्ध होकर ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह भी संसार में मर्यादा है कि जैसा किसी को निश्चय होता है वैसा ही वह संसार को देखता है। पिंड से भी शरीर होता है, क्योंकि यह भी आदि नीति में निश्चय हुआ है। जैसे आदि नीति में निश्चय हुआ है वैसे ही होता है। जो पवन है सो पवन ही है, और जो अग्नि है सो अग्नि ही है। इसी प्रकार कल्प पर्यंत जैसे मनोराज्य हुआ है वैसे ही स्थित है। जैसे जल नीचे को ही चला जाता है ऊपर नहीं जाता, वैसे ही जो आदि में निश्चय हुआ है वही कल्प भर रहता है। हे राम जी, जगत व्यवहार में तो ऐसे है और परमार्थ में दूसरा कुछ हुआ नहीं। इस जीव ने आकाश में मिथ्या देह रची है, परमार्थ दृष्टि से केवल निराकार अद्वैत आत्मा है। शरीर इसके साथ नहीं है, इससे जगत कैसे हो? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अपने प्रश्न पर बृहस्पति और राजा बलि का एक इतिहास सुनो। जब 6 कल्प व्यतीत हुए तो दूसरे परार्ध में राजा बलि हुआ। वह महापराक्रमी था। उस राजा बलि ने संपूर्ण दैत्यों राक्षसों को जीतकर अपने वश में किया और उन पर अपनी आज्ञा चलाई। इंद्र को भी जीतकर अपने वश में किया और उसका संपूर्ण ऐश्वर्य ले लिया। देवताओं और किन्नरों पर उसकी आज्ञा चली और भूमि लोग भी उसने ले लिया। जब वह सब ले चुका तब उसने धर्म आचरण को ग्रहण किया। एक समय सब सभा जुड़ी थी, उसमें यह चर्चा चली कि जन्म कैसे होता है और मरण कैसे होता है। तब राजा बलि ने देवगुरु बृहस्पति से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, यह पुरुष जब मृतक होता है तब शरीर तो भस्म हो जाता है, फिर कर्मों के फल यह कैसे भोगता है और शरीर बिना कैसे आता जाता है, सो भी आप कहिए। बृहस्पति बोले, हे राजन, जीव के देह नहीं है। जैसे मरुस्थल में जल भासित होता है पर वास्तव में होता नहीं है, वैसे ही जीव के साथ शरीर भासित होता है पर है नहीं। जीव न जन्मता है न मरता है, न भस्म होता है न दुखी होता है। यह सदा अच्युत रूप है पर स्वरूप के प्रमाद से अपने को दुखी जानता है कि मैं दुख भोगता हूं और जन्मा हूं। इतना काल हुआ है, यह मेरी माता है, यह पिता है, मैं इनसे उपजा हूं, फिर अपने को मृतक हुआ जानता है। हे राजन, भ्रम से ऐसे देखता है जैसे निद्रा भ्रम से स्वप्न में देखता है, वैसे ही अज्ञान से जीव आपको मानता है। जब मृतक होता है तब जानता है कि मेरा शरीर पिंड से हुआ है और अब मैं दुख सुख भोगूंगा। जैसे स्वप्न में आकाश होता है और वहां वासना से अपने साथ शरीर देखता है और सुख दुख भोगता है, वैसे ही मरकर जीव अपने साथ शरीर देखता है और दुख सुख का भागी होता है। परमार्थ से इसके साथ शरीर ही नहीं तो जन्म मरण कैसे हो? स्वरूप से प्रमाद करके देहधारी की तरह स्थित हुआ है और उस देह से मिलकर जैसे जैसे भावना करता है वैसा ही फल भोगता है और वासना के अनुसार जैसी भावना होती है वैसे ही आगे शरीर को देखता है और पंचभौतिक संसार को देखता है। इस प्रकार वह भ्रमता है और अपने को जन्मता मरता देखता है। जैसे समुद्र में तरंग उठता और मिट जाता है, वैसे ही शरीर उपजता और नष्ट हो जाता है। शरीर के संबंध से ही उपजता और नष्ट होता जान पड़ता है। यह आश्चर्य है कि आत्मा ज्यों का त्यों स्वाभाविक स्थित है, उसमें वासना के अनुसार विश्व देखता है। हे राजन, विश्व इसके हृदय में स्थित है और यह भावना के अनुसार आगे देखता है। इस जीव में विश्व है पर विश्व में जीव नहीं। जैसे तिल में तेल है पर तेल में तिल नहीं, सुवर्ण में भूषण कल्पित है, भूषण में सुवर्ण कल्पित नहीं, वैसे ही विश्व सत भी नहीं और असत भी नहीं। सत इस कारण नहीं कि चल रूप है, स्थिर नहीं, और असत इस कारण नहीं कि विद्यमान लगता है। इसे इसकी भावना को त्यागो। यह दृश्य मिथ्या है, इसका अनुभव मिथ्या है और इनका जानने वाला अहंकारी जीव भी मिथ्या है। जैसे मरुस्थल में जल मिथ्या है, वैसे ही आत्मा में अहंकार और जीव मिथ्या है। हे राजन, जब तक शास्त्रों के अर्थ में चपलता है और वह स्थित से रहित है, तब तक संसार की निवृत्ति नहीं होती। जब दृश्य के फूरने से अहंकार से यह जड़ सा हो जाए, तब इसको आत्मपद की प्राप्ति हो। जब तक यह जीव दृश्य की ओर फुरता है और चेतन सावधान है, तब तक संसार में भ्रमता है। हे राजन, आत्मा न कहीं जाता है न आता है, न जन्मता है न मरता है। जब चैत्य और चित्त का संबंध मिट जाए, तब यह आनंद रूप ही है। चैत्य दृश्य को कहते हैं और चित्त अहंकार संमित का नाम है। जब दोनों का संबंध आपस में मिट जाएगा, तब शेष आत्मा ही रहेगा। वह ब्रह्म आत्मा और शिवपद है, जिसमें वाणी की गति नहीं। यह अनुभव निर्वाच्य पद है, इसी में स्थित हो। हे राम, जिस युक्ति से इसकी इच्छा अनिच्छा निवृत्त हो, वही युक्ति श्रेष्ठ है। जब तक यह स्फुरण होता है कि यह भाव है, यह अभाव है, तब तक इसको जीव कहते हैं, और जब भाव अभाव का स्फुरण मिट जाता है, तब जीव संज्ञा भी जाती रहती है और वह शिव पद आत्मा की प्राप्ति होती है, जहां वाणी की गति नहीं है। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।